स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सपन्या नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मसा कर मुझे मसा कर, रू से यसु मुझे मसा कर, मसा कर मुझे मसा कर, रू से यसु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे मुंह को मेरे मसा कर, यसु मसा कर, मसा कर मुझे मसा कर, रू से यसु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे मुंह को मेरे मसा कर, मुझे मसा कर, मेरे ख्यालों को मसा,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और प्रिय मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने अध्ययन को बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक से एक नए पुस्तक का अध्ययन करेंगे, सपन्याह। मेरे मित्रों, इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने से पहले आज हम इसके प्रस्तावना को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि इस पुस्तक के अध्ययन में परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, सत्य वचन के लिए। आज जब हम आपके वचन में से एक नए पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप जिस प्रकार से हमें पिछले पुस्तक के अध्ययन करने में सहायता किए हैं, हबक्कूक की पुस्तक, उसी प्रकार आज सपन्याह की पुस्तक का अध्ययन करने में हमारी सहायता करें। आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि आपके वचन को हम सब समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार चलने पाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस नए पुस्तक के परिचय पर भी, इसके प्रस्तावना पर भी आप आशीष दें, ताकि इसके द्वारा हम अपने जीवन में और भी अधिक बातों को सीखने पाए। आज के अध्ययन के लिए हम आपकी आशीष मांगते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हबक्कूक ने तो अपना परिचय नहीं दिया था, परंतु सपन्याह अपना परिचय देने में भविष्यद्वक्ताओं से आगे बढ़ गया है। जी हाँ, वह अपने वंशावली को अपने पूर्वज राजा हिजकिय्याह तक पहुंचा देता है। कहने का अर्थ है कि सपन्याह राजसी वंश का था। सपन्याह अपना लेखन काल भी अपने वंशावली के समान ही अति स्पष्ट बताता है। सपन्याह की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यशयाह के दिनों में सपन्याह के पास यहोवा का यह वचन पहुंचा। वह समय यहूदा राज्य के लिए अंधकार का समय था। इब्रानी के धर्मशास्त्र के अनुसार सपन्याह की पुस्तक अंतिम है, अर्थात यहूदा की बंधुआई के पूर्व की। इसका अर्थ है कि वह यर्मियाह का समकालीन था। मीका को भी यर्मियाह का समकालीन माना जाता है, परंतु मुझे संदेह है क्योंकि सपन्याह की भविष्यवाणी दाऊद के राज्य का मरण गीत है और वह योशियाह के युग में जागृति पर जोर देता है। मेरे मित्रों, सपन्याह की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार का स्थान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि वह बाइबल लोकप्रिय में, या यूं कहें कि लोकप्रियता में पहला स्थान रखती है। सपन्याह के विषय न तो लोकप्रिय हैं और न ही मेरे विचार में अधिक पढ़े जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि सपन्याह से प्रचार किए गए उपदेश बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं या आए होंगे। एक बार मैंने कलीसिया से पूछा कि सपन्याह के वचनों से कितनों ने प्रचार सुना है, तो 2500 से 3000 उपस्थित जनों में से केवल 2 या 3 ही हाथ उठे थे। इसका कारण इस पुस्तक की संक्षिप्तता नहीं है और न ही यह अन्य पुस्तक के समान है। यदि इस पुस्तक का विषय जाना जाए तो मेरे विचार में इसकी सराहना होगी, क्योंकि इसका विषय वही है जो यूहन्ना के सुसमाचार का है। यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहा गया है और हम देखेंगे कि सपन्याह प्रेम का भविष्यद्वक्ता है। आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको इसका एक संदर्भ देना चाहता हूं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 से परिचित हैं, परंतु क्या आप सपन्याह 3 अध्याय उसके 17 पद से परिचित हैं? लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी और वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे शब्द से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मेरे प्रियो, क्या यह एक सुंदर पद नहीं है? परंतु सपन्या यूहन्ना रचित सुसमाचार से भिन्न है, क्योंकि यह पद एक प्रकार से आंधी भरे समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। इस पुस्तक का अधिकांश भाग कठोर और निर्दयता पूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोध उंडेला जा रहा है। अध्याय 3 के आरंभ में वह कहता है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। इस पुस्तक में दंड की चर्चा इतनी अधिक है तो फिर इसका विषय प्रेम कैसे हो सकता है? या आपका भी प्रश्न हो सकता है। इसका प्रमाण खोजना ऐसा है जैसा भूसी में सुई खोजना। मेरे प्रियो, मैं एक रहस्यमय कहानी सुनाकर अपना विचार सिद्ध करना चाहता हूं, जो सपन्याह के अध्ययन का एक विचित्र आरंभ है, परंतु इससे हमें समझने में आसानी होगी। मेरी कहानी का शीर्षक है प्रेम का अंधकार पक्ष। किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्ची अपने बिस्तर पर लेटी थी। वह बड़ी परेशान थी। तभी एक कठोर व्यक्ति चुपचाप से उसके कमरे में आया और उसके निकट पहुंचा। उसे देखकर वह बच्ची डर गई और चिल्लाने लगी। उसकी माता दौड़कर आई। बच्ची उसे गले में बाहें डालकर रोने लगी। उस व्यक्ति ने फोन करके अपने किसी जानकार को बुलाया। उसने बच्ची को उसकी मां से छीना और अपनी कार में लेकर चल पड़ा। वह बच्ची रोती रही। अंत में वे एक पुरानी इमारत के पास पहुंचे। वहां चारों ओर अंधकार था, परंतु एक कमरे में बत्ती जल रही थी। वह बच्ची तुरंत एक पुरुष के हाथों में दे दी गई, जिससे उस पुरुष ने फोन पर बात की थी। उसने उस बच्ची को एक स्त्री को थमाया और दोनों उसे लेकर भीतरी कमरे में चले गए। उसे उठाकर लाने वाला बाहर ही छोड़ दिया गया। भीतरी कमरे में उसके मर्म स्थल में एक छुरी घुसा दी गई। वह बच्ची मृतक सी हो गई। आप कहेंगे ऐसे अपराधियों को पकड़कर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। मैंने किसी भयानक अपराधी या किसी पागल की कहानी नहीं सुनाई है। मेरे प्रियो, मैंने कोमल प्रेम का कार्य सुनाया है। मैं इससे अधिक निष्ठावान प्रेम प्रदर्शन की कल्पना नहीं कर सकता। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं विस्तार से बताता हूं, तब आप इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। वह बच्ची उस रात पेट के दर्द से परेशान थी। उसके पेट में पहले भी दर्द होता था। डॉक्टर ने उसके माता पिता को चिताया था कि वे उसका ध्यान रखें और सावधान रहें। उसके कमरे में आने वाला व्यक्ति उसका पिता था। अपनी बच्ची को परेशान देखकर वह उसके कमरे में आया और तुरंत डॉक्टर को फोन किया और उसे अस्पताल लाने का प्रबंध किया। अस्पताल पहुंचकर उसने उसे डॉक्टर के हाथ में दे दिया और डॉक्टर ने ले जाकर तुरंत उसका ऑपरेशन किया। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण घटना में उसके पिता का काम कोमल प्रेम, चिंता और बुद्धिमानी का निर्णय था। यह प्रेम का अंधकार पक्ष तो है, परंतु है तो प्रेम ही। पिता अपने पुत्री से उतना ही प्रेम करता था जितना अगले सप्ताह किया, जब वह उसके लिए फूल लेकर के आया। डॉक्टर के हाथ में उसे देना उसका उतना ही अनुराग था जितना उसके चंगा हो जाने पर उसकी माता के हाथों में उसे देना था। मेरे मित्रों, प्रेम अनंत सुरक्षा और प्रेम पात्र का स्थायी कल्याण चाहता है, जो क्षणिक शांति और सांसारिक सुख से कई गुना बढ़कर है। प्रेम अपने प्रेम पात्र का सर्वोच्च लाभ देखता है। सपन्याह की पुस्तक इन्हीं बातों को दर्शाती है। प्रेम का अंधकार पक्ष। जी हां, आज परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, मानो वह उसकी दुर्बलता है, न कि उसकी शक्ति। प्रेम को केवल हरा हरा ही दिखाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रेम दादा दादी का दुलार है, न कि बच्चे के लिए माता पिता की उग्र एवं प्रचंड चिंता का प्रेम है, जो अपने संतान के सर्वांग सुधि ले सके। मेरे प्रियो, प्रचारक प्रायः कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। जब तक कि इसमें नकली मिठास ना आ जाए, परंतु वे परमेश्वर के प्रेम के निराशजनक पक्ष का उल्लेख कभी भी नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के प्रेम को क्षतिग्रस्त करते हैं। वे प्रेम को उत्प्रेरक प्रकट करने की अपेक्षा उबाऊ बना देते हैं। वे प्रेम को प्रेम पात्र की चिंता करने की अपेक्षा भावनात्मक बना देते हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम का निराशाजनक पक्ष भी देखें। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर को भी देखें कि वह आपसे प्रेम करता है और वह दूसरे पहलू में वह निराश भी होता है। वह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। मेरे मित्रों, एक बड़ा वैद्य अपनी संतान को ऑपरेशन तख्त पर रखता है जब देखता है कि पाप रूपी रोग हमारी आत्मा को खा रहा है, तब वह उसे छुरी से काटता है। वह हमारे साथ कठोरता से व्यवहार करने में पीछे नहीं हटता है। वह कठोरता से व्यवहार करने में भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह हमसे मधुरता प्रदर्शन में प्रेम करता है। जब वह देखता है कि हमारे अनंत कल्याण के लिए हमें कष्टों से गुजरना है, तो वह हमारे साथ कठोरता का व्यवहार करने से नहीं चूकता है। जी हाँ, हमारे कष्टों के समय वह हमसे सर्वाधिक प्रेम करता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि जिससे वह प्रेम करता है उसकी वह ताड़ना भी करता है। वह हमें अनुशासित करता है, हमें प्रशिक्षण देता है। जी हाँ, हर एक माता पिता जो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जब वह कोई उदंड करता है या बदमाशी करता है, उसके माता पिता उसे डांटते और फटकारते हैं, छड़ी भी लगाते हैं, या इसलिए नहीं कि वह उनका बेटा है या उससे प्रेम नहीं करते हैं, परंतु इसलिए क्योंकि वह उनका बेटा है और वे इससे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छा बने। प्रभु यीशु ने एक और उपमा हमें दी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फले। परमेश्वर हमारे जीवन में से फल रहित पक्ष को हटा देता है जो कष्टदायक होता है। किसी भक्त जन ने वर्षों पूर्व कहा था, बागवान डाली के अत्यधिक निकट तक होता है जब वह उसे छांटता है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर जब आपके जीवन से हानिकारक बात काटता है, तब वह आपके सर्वाधिक निकट होता है। चार्ल्स स्पर्जन ने एक किसान के खेत में दिशा सूचक मुर्गा देखा जिस पर लिखा था, परमेश्वर प्रेम है। उन्होंने उस किसान से पूछा, आप इससे क्या यह प्रकट करना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हवा के समान बदलता रहता है? उसने कहा, जी नहीं, मेरा अर्थ इससे यह नहीं कि परमेश्वर का प्रेम बदलता है, परंतु यह कि हवा किसी भी ओर बहे वह प्रेम ही है। मेरे मित्रों, आज आपके जीवन में वह समीर चलाता है, हवा चलाता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। परंतु जब आपके जीवन में वह आंधी लाए, तब भी वह आपसे उतना ही प्रेम करता है। किसी ने इस बात को मुझसे भी अच्छा व्यक्त किया है, परमेश्वर ने सदा ही नीले आकाश, फूलों की सेज, वर्षा रहित सूर्य, दुख रहित आनंद, कष्ट रहित शांति, परिश्रम एवं परीक्षा, परेशानी एवं हाय, बोझ मुक्ति, चिंता मुक्ति की प्रतिज्ञा नहीं की है, परंतु निश्चय ही उसने हमें दिन प्रतिदिन के सामर्थ्य की, शक्ति की प्रतिज्ञा की है। परिश्रम करने वाले के लिए शांति, मार्ग की ज्योति, परीक्षा में अनुग्रह, स्वार्गिक सहायता, अचूक संवेदना, अक्षय प्रेम की प्रतिज्ञा की है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और कष्टों के स्थान में हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपसे प्रेम करता है, कुछ भी हो वह आपसे प्रेम करता है, और आप इस सत्य का इनकार नहीं कर सकते हैं। मधुरता और ज्योति प्रत्येक स्तर पर प्रेम से जुड़े रहते हैं, परंतु इससे प्रेम की पूर्ण आयत को नकारा नहीं जा सकता। प्रेम सदा ही प्रेम के पात्र के लिए व्यक्त किया जाता है। यही कारण है कि परमेश्वर के दंड के साथ उसके प्रेम को जोड़ना कठिन हो जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम को उसके दंड से अलग कर देते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि दो परमेश्वर हैं, एक दूसरे के विपक्षी हैं। सपन्याह की पुस्तक में परमेश्वर का क्रोध और दंड है, पहला अध्याय के 15 पद में, तीसरा अध्याय उसके 8 पद में, परंतु उसमें परमेश्वर का प्रेम निहित है। मैं प्रेम के निराशजनक पक्ष के संबंध में एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। जब मैं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा था, तब मातृ दिवस के दिन मैंने आराधना में देखा कि वहां अनेक माताएं थी, वे सब सजी धजी थी, परंतु एक माता थी जो सजी धजी तो थी, परंतु उसके चेहरे से दुख प्रकट हो रहा था। मैं जानता था कि उसके दुख का कारण उसका पुत्र था, जो एक अच्छा एवं सफल व्यवसायी था। वह विश्वासी नहीं था। यह महिला स्वयं तो उसके लिए प्रार्थना करती थी, परंतु अन्य लोगों से भी उसके लिए प्रार्थना करने का निवेदन करती थी। वह अपनी मां की बातें नहीं सुनता था। उसने मुझसे कहा, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे पुत्र को बचा ले, चाहे उसे बीमार कर दे। तब कुछ रुक कर वह बोली, परमेश्वर चाहे उसकी जान ले ले, परंतु इससे पूर्व कि बहुत देरी हो वह उसे बचा ले। क्या वह इस अपराध के षड्यंत्र में पकड़ी जा सकती थी? जी नहीं, यह उसके अपराध का षड्यंत्र नहीं था, यह उसका अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था। वह उससे इतना अधिक प्रेम करती थी कि उसकी आत्मा को नरक से बचाने के लिए वह उसकी मृत्यु का दुख भी झेलने को तैयार थी। मेरे मित्रों, सपन्याह की पुस्तक परमेश्वर के प्रेम का दो पक्ष प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में व्यक्त दंड से कठोर दंड की अभिव्यक्ति और कहीं नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रेम है। इस छोटी पुस्तक में दो विचार प्रकट होते हैं, आइए हम देखें। पहला है यहोवा का दिन, 7 बार व्यक्त किया गया है यहोवा का दिन। उबद्याह और योएल सबसे प्रथम लेखक भविष्यद्वक्ताओं ने इस अभिव्यक्ति का परिचय करवाया था। सब भविष्यद्वक्ताओं ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग भी किया है, और अब अंतिम भविष्यद्वक्ता भी इसका उल्लेख करता है। यह उक्ति 7 बार तो आई है, परंतु इसके समानार्थक अभिव्यक्तियां इस पुस्तक में और भी हैं। इसके दो अभिप्राय हैं, महाक्लेश का समय जो प्रभु राज से पूर्व का समय होगा, परंतु इसका अभिप्राय प्रभु राज से भी है, अर्थात महाक्लेश के आरंभ से चलकर प्रभु राज तक यहोवा का दिन होगा। सपन्याह की पुस्तक का ध्यान केंद्र परमेश्वर का दंड है। योएल टिड्डियों की उपमा देकर भावी यहोवा के दिन की भविष्यवाणी करता है। योएल कहता है कि यहोवा का दिन प्रकाश का नहीं अंधकार का समय होगा। मनुष्य के पाप के अंधकारमय पटल पर परमेश्वर ज्योति से हमारे लिए सुसमाचार की कहानी लिखता है। और दूसरा कारण हम देखते हैं जलन। इसका उपयोग वह दो बार करता है। परमेश्वर की जल जलाहट हमारी जल जलाहट से अलग है। हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की जल जलाहट में वह मनुष्य को नष्ट होता नहीं। आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया है और उसके लिए युक्ति और मुक्ति दोनों की बातें उसने की है और उसका वह उद्धार किया है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा ना हो तो वह दंड देता है। सपन्याह कहता है कि परमेश्वर दंड देने में भी और उद्धार करने में भी महिमा पाता है, जो अधिकांश मनुष्यों की समझ से परे है। यहेजकेल की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में रूस के लिए परमेश्वर के भावी दंड का उल्लेख किया गया है। पद 16 में लिखा है, इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझ से अपने देश पर इसलिए चढ़ाई करवाऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, मैं इस अभक्त देश को दंड दूंगा और जब मैं उनको दंड दूंगा तब मेरा महिमान्वन होगा। यह परमेश्वर का भारी वचन है जो सुनने वालों के लिए कड़वी लगती है। हमारे लिए उचित होगा कि हम परमेश्वर के विचारों को सीखकर उनका अनुसरण करें, क्योंकि हमारे विचार उसके नहीं हैं और हमारे मार्ग उसके मार्ग नहीं हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस पर विचार करना है कि इस पुस्तक का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अपने मन को सचेत करें ताकि हम परमेश्वर के उन पहलुओं को देखने पाएं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब परमेश्वर के निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रूसे यसु मुझे मसा कर, खिदमत के लिए खादम को अपने मसा कर, यसु मसा कर, मसा कर, मुझे मसा कर, रू से यसु मुझे मसा कर, खिदमत के लिए खादम को अपने मसा कर, मुझे मसा कर, रूके तेल से मसा कर, अपने रूह से मसा कर, रूके तेल से मसा कर, अपने रूह से मसा कर, खुशी के से अपने लहू से मसा